समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ करते हैं। कार्यक्रम आज सवेरे में हाजिर हैं हम लेकर एक और नए अंक के साथ। मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। और फरहत कहां से लाए इतनी ऊर्जा इतनी ठंड में, व्हेन आई एम श्योर दैट ऑल आवर लिसनर्स आर प्रोबब्ली लिसनिंग टू अस टक्ड इनटू देयर बेड्स इन देयर क्विल्ट्स इन देयर ब्लैंकेट्स। बट हम लोग ठंड का सुबह ठंड में आना
ठंड का सितम जो है वो सहा नहीं जा रहा है।
यस एब्सोल्युटली, बट नॉनदलेस आई थिंक वी डिराइव आवर एनर्जी बाय इंटरैक्टिंग विद आवर लिसनर्स एवरी डे इन आज सवेरे। एंड वेलकम टू द संडे एडिशन ऑफ आज सवेरे। प्रोबब्ली यू आर not coming out of bed definitely at this hour when it's not when you're not rushing for office and everything. So be relaxed while we give you an update of what is happening in our country. And of course in the metro news section we'll give an update of your own city. Dekhenge kya kuch khas chal raha hai aapke apne shaharon mein. Aur of course jo last section
hai itihas ke pannon ko palatenge hum aur kuch mashhoor jo hai wo jani mani hastiyon ko hum yaad karenge.
So first let's start with the headlines Farhat.
Ji sabse pehle शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये तीन दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन और कार्यान्वयन करना है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद तेज आर्थिक वृद्धि और विकास में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना होगा। इसमें सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
होम मिनिस्टर अमित शाह विल अटेंड वेरियस प्रोग्राम्स इन रायपुर एंड जगदलपुर ड्यूरिंग हिज छत्तीसगढ़ विजिट टुडे। Union Home Minister Amit Shah will present the prestigious President's Police Colors to the Chhattisgarh Police in a ceremony organized at Police Parade Grounds in Raipur today. President Colors, also known as Nishan, is the highest honor that can be bestowed upon any military unit of the country. Now all the officers of Chhattisgarh Police will wear this emblem in their uniform, which will become a symbol of their excellence and identity. Union Home Minister will also attend the closing ceremony of Bastar Olympics organized in Jagdalpur, the divisional headquarters of Bastar, today. Apart from this, he will also interact with the surrendered Maoists. The Home Minister will pay tribute to martyrs in Jagdalpur and meet the families of the victims affected by left-wing extremism.
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वे मंगलवार तक भारत में रहेंगे।
The National Investigation Agency NIA today filed a charge sheet against an accused in the case related to the terrorist attack on a bus carrying pilgrims from Shivakori, Ransu to Katra in Jammu and Kashmir. In its charge sheet presented before the NIA Special Court in Jammu, the agency has charged and arrested the accused Hakim Khan under various sections of the IPC and the Unlawful Activities Prevention Act or UAPA. The attack took place on the 9th of June 2024 when unidentified terrorists had opened indiscriminate firing at the bus when it reached Kanda near Jhandi Moore. 8 pilgrims as well as the bus driver were killed and 41 pilgrims were seriously injured in the attack.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले 10 वर्ष में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में तीन गुना वृद्धि होगी। डॉक्टर सिंह ने कल भारत आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक मानकों पर ले जाने के पथ पर है। उन्होंने बताया कि भारत ने वर्ष 2014 के बाद से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में ऊंची छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र विश्व अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 8 से 9% का योगदान करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोला है जिसमें व्यापक संभावनाएं भी हैं।
Now coming news about the pollution of Delhi NCR. Yes. Well, the Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas has revised the Gradient Response Action Plan or GRAP for entire NCR. Under the revised GRAP, certain targeted actions that were earlier under stages 3 and 4 have now been incorporated into stages 2 and 3. Actions under stage 2 deal with very poor air quality, with Delhi's air quality index ranging between 301 and 400. Stage 3 deals with severe air quality with AQI between 401 and 450. Stage 4 deals with severe plus air quality with AQI above 450.
वहीं सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी थी। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान करने से संबंधित होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज तपेदिक जागरूकता मैत्री क्रिकेट मैच के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें सभी राजनीतिक दलों के चुनिंदा सांसद भाग लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मैत्री मैच में भाग लेने के लिए श्री बिरला को आमंत्रित किया है। 20 ओवर का ये मैच आज सुबह 9 बजे से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका प्रसारण दूरदर्शन के खेल चैनल और संसद टीवी से किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष एकादश टीम के कप्तान अनुराग सिंह ठाकुर और राज्यसभा सभापति एकादश की टीम के कप्तान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू होंगे। और अब बात कर लेते हैं सारा मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मीडिया से बात करते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा कि दिल्ली में भी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है और उन्होंने कहा कि 16 और 17 दिसंबर तक तापमान में वृद्धि की भी संभावना व्यक्त की है।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर एन अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
In hockey, women's junior Asia Cup, India will face China in the title clash at Muscat, Oman today. Defending champions India are now on the brink of retaining their title. Women in blue will also look to take revenge of the pool match defeat from China by 2-1. Yesterday, India secured a dominant 3-1 win over Japan, earning a well-deserved spot in the final. Next update is from World Squash Team Championships, where Indian men's team finished their campaign at 5th spot after beating host Hong Kong China 2-0 in the playoffs yesterday. On the other hand, the Indian women's team ended their campaign in the 7th position after securing a narrow 2-1 victory over France in their final match of the competition. Moving on to domestic cricket, Mumbai will face Madhya Pradesh in the final match of the Syed Mushtaq Ali Trophy at M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru today. The match will begin at 4:30 p.m. Shreyas Iyer-led Mumbai will try to lift the trophy for the second time after 2022, while Rajat Patidar-led Madhya Pradesh are still in search of their first title. Both the teams are filled up with a strong batting order. Moving towards Indian Super League football, Mohammedan SC will lock horns with Mumbai City FC at Kishore Bharti Krirangan in Kolkata this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Last we have from Pro Kabaddi League, where Jaipur Pink Panthers will face Tamil Thalaivas at the Balewadi Sports Complex in Pune today. The match will begin at 8 p.m. This will be followed by another match between U Mumbai and UP Yodhas in same venue at 9 p.m. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और खेल खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो सारा क्या है सबसे पहले आपके पास चेन्नई में।
वेल इफ यू टॉक अबाउट चेन्नई, वेल द स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्किल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स एट द सेंट्रल पॉलिटेक्निक कॉलेज इन तारामणि। दोज विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, हंचबैक, ड्वार्फिज्म एंड दोज विद पार्शियल लोकोमोटिव डिसऑर्डर्स कैन एनरोल इन कोर्सेज ऑफर्ड बाय द स्किल ट्रेनिंग सेंटर। The skill center will facilitate students to get the most sought-after skills of the industries such as technical skills, soldering skills, communication skills and repairing skills. A maximum of 30 students will be admitted to each of these two courses. The Directorate of Revenue Intelligence officials at Chennai Airport seized 2.2 kgs of gold worth 1.72 crore rupees. The seizure happened when a passenger flying from Dubai to Chennai via Colombo passed the gold to a passenger departing to Colombo. Officials said that the flight landed in Chennai. The passenger had reached the arrival terminal that is separated from the departure terminal through a 15 feet tall glass door and threw a package containing gold paste to a passenger on the other side, and the latter caught it in the presence of CISF personnel. DRI sleuths caught both the passengers and the ground staff was waiting to receive the gold in his body. Moving on to Bengaluru, Traffic violations detected along the Bengaluru-Mysuru highway have surged, with 13 lakh cases recorded between the year 2022 and 2024. According to the data released by the Karnataka Home Department during the Belagavi session of the state legislature on Thursday, these violations were identified using AI-powered Intelligent Traffic Management System or ITMS cameras installed along the 119-kilometer-long 10-lane highway. Karnataka Minister M.B. Patil announced on Saturday plans to expedite the development of Swift City in Sarjapura, Bengaluru. A press statement from his office described the initiative as Karnataka's third major planned industrial hub following Electronic City and ITPL. The project aims to cater to startups, workspaces, innovation, finance and technology. Highlighting concerns over the lack of well-planned workspaces despite Bengaluru hosting thousands of companies, the minister emphasized the need for infrastructure upgrades. And now moving on to Hyderabad, cold weather has gripped Telangana state with minimum temperatures hitting new lows each day. As per the data from the Telangana State Development Planning Society or TGDPS, Pochara in Adilabad district recorded the state's lowest temperature at 6.4 degrees Celsius this morning, followed closely by 6.6 degrees Celsius in Thandra of Nirmal district. The lowest temperature in Hyderabad was recorded at 10.2 degrees Celsius at Ramachandrapuram. Meanwhile, Met officials issued an orange warning to many districts in the state that the minimum temperatures may record 2 to 4 degrees Celsius below normal temperatures for the next 3 days. So, Farhat, this was the buzz that I had from the southern cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is an update from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सर, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से. नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन परिसर में चल रहे पुस्तकायन पुस्तक मेले का आज अंतिम दिन है. साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रकाशक अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं. कल शाम मेले में सांस्कृतिक और व्यंग्य पाठ के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. तो मुझे लगता है सायरा, ये बहुत ही अच्छी पहल है जब ऐसे दौर में जब जहां पर हर कोई जो है वो डिजिटल से जुड़ रहा है.
यस एब्सोल्युटली, और स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें अपनी लाइफ में भी और किताबों की तरफ वापस जाइए तो एक अलग सा सुकून होता है किताबों की दुनिया.
बिल्कुल, और गुलजार का एक शेर भी है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती.
यस दैट्स क्वाइट अ ट्रेजेडी ऑफ दीस टाइम्स, बट मुलाकात करना ना करना हमारे ऊपर ही डिपेंड.
जी बिल्कुल, और अपनी पुरानी किताबों को अब अलमारियों से निकाला जाए और थोड़ा सा रुख किया जाए पुस्तक मेले का.
एब्सोल्युटली.
और अब आगे बढ़ते हैं, खाने के शौकीन जो लोग हैं और दिल्ली में रह रहे हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रुख कर सकते हैं. यहाँ साल के आखिरी महीने में सबसे बड़े नेशनल स्ट्रीट फूड का आयोजन किया गया है. यहाँ भारत के सभी राज्य के स्ट्रीट फूड का स्वाद आपको एक ही स्थान पर चखने को मिल जाएगा. इसके अलावा यहाँ लाइव म्यूजिक कंसर्ट और चौपाई की भी व्यवस्था की गई है जहाँ बच्चों से लेकर बड़े तक वीकेंड्स पर मजे कर सकते हैं. तो आप आज जो है, रविवार भी है, संडे है, जाना ना.
यस इनफैक्ट आज जेएलएन में आज तो लास्ट डे है जश्न रेख्ता का, उसमें भी चटखारे नाम का एक पूरा उनका फूड फेस्टिवल है एंड उसमें बहुत सारी यू नो क्विजींस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इज देयर, चटखारे एंड एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स द फॉलोइंग इवेंट इज ऑफ कोर्स द स्ट्रीट फूड फेस्टिवल दैट पीपल शुड डेफिनेटली गो.
और इस फेस्टिवल में 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं जहां पर 500 से ज्यादा स्ट्रीट फूड का जो स्वाद है वो देखने को मिलेगा. तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल है जहां पर आप जा सकते हैं और अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं. और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के जयगढ़ में गैस रिसाव की घटना के बाद जिंदल कंपनी के 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. विधायक उदय सामंत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार राजाराम महात्रे ने कंपनी के 2 प्रबंधकों और 2 इंजीनियरों के खिलाफ जयगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं आरोपियों पर नियमित रखरखाव और मरम्मत कार्य के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है. मुंबई विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने दोहरी डिग्री, संयुक्त डिग्री और ट्विनिंग डिग्री कार्यक्रमों की शुरुआत को मंजूरी दे दी है. इस पहल के तहत छात्रों को एक साथ 2 कॉलेजों या उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने की अनुमति होगी. मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति रविन्द्र कुलकर्णी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य सर्वोत्तम शैक्षणिक प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है. वहीं मुंबई के दादर स्टेशन के पास एक मंदिर के लिए सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस पर रोक लगा दी गई है। ये नोटिस सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन के सहायक डिवीजनल इंजीनियर द्वारा जारी किया गया था। और अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता का रुख कर लेते हैं। कोलकाता स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज को नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात पर खुशी और प्रसन्नता व्यक्त की है। इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से भी कोष प्राप्त होता है। तो महानगरों की खबरों के बाद रुक कर लेते हैं महानगरों के मौसम का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो ठंड की शुरुआत तो हो चुकी है, ये हमने शुरुआत में भी बात कर ली। और
शुरुआत क्या, मेरे ख्याल से ठंड अपने शबाब पे आ रही है धीरे धीरे। वी ऑल आर शिवरिंग इवन इनसाइड द स्टूडियोस।
जी बिल्कुल। और लेकिन हम अपने श्रोताओं को आज का तापमान बता दें कि आज अधिकतम जो तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में हल्की ठंडक रहेगी, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
एंड आपने मुंबई के दिल्ली के जो है मौसम की बात करी, हम लोग कह रहे थे काफी ठंड पड़ रही है एंड स्पेशली इन दिल्ली वेयर और इन ऑल द मेट्रो सिटीज वेयर पीपल प्रॉब्ली लिव मोर इन हाई राइजेस एंड इन फ्लैट्स, जहां पे धूप थोड़ी कम आती है। सो यू कैन यू नो आई सॉ आई मीन बीइंग द वीकेंड यस्टरडे पीपल वर जस्ट लिटरली थ्रॉन्गिंग टू ऑल दीज पार्क्स लाइक लोधी गार्डन सुंदर नर्सरी जस्ट टू कैच सम रेज एंड देयर वाज अ ह्यूज जैम that you can see that
एक वक्त था जब लोग आशियाने की तलाश करते थे, लेकिन अब ये वक्त है जब लोग धूप की तलाश करते हैं। और सुंदर नर्सरी है, लोधी गार्डन है, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल भी हैं, वहां जाकर जो है वो धूप का मजा ले सकते हैं।
Yes, absolutely, and I think it's the best time to even bond with a family.
जी
Moving on to the weather update from other cities, well, Chennai is expected to have a generally cloudy sky today. Minimum temperature was 24 degrees Celsius. Maximum will be around 31 degrees Celsius. While Bengaluru will have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. Minimum temperature was 18 degrees Celsius. Maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky as well, but some haze is also expected in the city of Hyderabad. Temperature will hover between minimum of 14 degrees and maximum of 28 degrees Celsius.
तो चलिए मौसम के बाद अब इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। जैसा कि आज है 15 दिसंबर 2024, दिसंबर का यानी आधा दिन तो निकल चुका है, मतलब 15 दिन पूरे हो चुके हैं, 15 दिन बाकी हैं।
एंड कितनी जल्दी साल बीतने लगे हैं फरहत, अभी लग रहा था 2024 शुरू हुआ है एंड नाउ वी आर जस्ट 15 डेज लेफ्ट ऑफ दिस ईयर एंड इमेजिन वी आर जस्ट 15 डेज अवे फ्रॉम द ईयर 2025।
बिल्कुल, बस हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला जो साल है वो सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो।
यस एब्सोल्युटली। एंड नाउ इफ यू टेक अ लुक एट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे, वेल ऑन दिस डे वे बैक इन द ईयर 1803 द ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड द स्टेट ऑफ ओडिशा।
और आज के दिन 1991 में मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को सिनेमा की दुनिया में उनके अहम योगदान के लिए स्पेशल ऑस्कर सम्मान दिया गया।
दैट्स राइट फरहत। एंड अ लिटिल सम इयर्स अगो इन 1948 द फर्स्ट शिप दैट वाज कंस्ट्रक्टेड फुली इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज बिल्ट एट द सिंधिया शिपयार्ड एंड वाज नेम्ड जल उषा। इट वाज लॉन्च्ड ऑन दिस डे इन द ईयर 1948। ऑल्सो ऑन दिस डे 1997 द मैग्सेसे अवार्ड विनिंग लिटरेटर महाश्वेता देवी, सितार माइस्त्रो अन्नपूर्णा देवी एंड रविन्द्र संगीत एक्सपोनेंट सुचित्रा मित्रा व ऑनर्ड विद देसी कोटम बाय द विश्व भारती यूनिवर्सिटी।
और 1948 से 1997 की ओर बढ़ते हैं। अरुंधति राय ने बुकर पुरस्कार जीता था आज ही के दिन और उन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं सन 2004 में दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीटी डायरेक्ट का शुभारंभ 2004 में आज ही के दिन किया गया था।
And now if you remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or their birthdays today, well, of course, we are going to start this section by remembering the Iron Man of India. Yes, today is Sardar Patel's or Vallabh Bhai Jhawar Bhai Patel's death anniversary, who is, of course, the world knows him as Sardar Vallabh Bhai Patel. And we know him of as an activist, not just an activist, and a remarkable statesman who served as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India. He was also a senior leader of the International Congress who played a significant role in the Indian independence movement and India's political integration. In India and elsewhere, he was often called Sardar, meaning chief, in Hindi, Urdu, Bengali and Persian, and he acted as the Home Minister during the political integration of India and the Indo-Pakistan War of 1947.
जी बिल्कुल, और देश की आजादी में सरदार पटेल का जितना योगदान था उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आजाद भारत को एक करने में दिया. 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं. इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का भी फैसला कर दिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाया.
And as the first Home Minister and Deputy Prime Minister of India, Patel organized relief efforts for partition refugees fleeing to Punjab and Delhi from Pakistan and worked to restore peace. Besides those provinces that had been under direct British rule, approximately 565 self-governing princely states had been released from British sovereignty by the Indian Independence Act of 1947. Patel, together with Jawaharlal Nehru and Louis Mountbatten, persuaded almost every princely state to accede to India. And of course, we are remembering Rasoolan Bai today. Unka pura naam tha Rasoolan Hussain. It's her death anniversary. A leading Hindustani classical music vocalist, she belonged to the Banaras Gharana and specialized in the romantic pura bank of the Thumri musical genre and Tappa. And if we talk about her early life, she was born in Mirzapur of Uttar Pradesh in a very poor family. Though she inherited the musical legacy of her mother called Adalat, and she displayed her grasp of her classical rags at a very early age. And recognizing this at the age of 5, she was sent to learn music from Ustad Shammu Khan and later from Sarangi players Ashiq Khan and Ustad Najju Khan.
और 1916 से 1946 तक के तीन दशकों का समय रसूलन बाई के जीवन का स्वर्ण काल कहा जा सकता है. आपको बता दें कि नेपाल और अफगानिस्तान तक अपने गायन की प्रस्तुतियां देने गई थी वो. ग्रामोफोन पर आपकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो 1935 में की गई. इसके अलावा 1947 में देश की आजादी के साथ साथ रेडियो पर कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई तो सबसे पहले रसूलन बाई आगे आई.
जो ये ठुमरी बज रही थी लगत करजवा मां चोट फूल गेंदवा न मार, दिस इज वन ऑफ अ मोस्ट फेमस रेंडिशंस. एंड रसूलन बाई एंड शी बिलोंग्ड ऑफ कोर्स टू द तवायफ ट्रेडिशन, बिकॉज पहले सब जितनी भी ज्यादातर सिंगर्स होती थी दे ऑल वर तवायफ. एंड तवायफ का जो कॉनोटेशन है वो आज के जमाने में जो लोग सोचते हैं वो नहीं था. दे वर आर्टिस्ट एंड दे वर म्यूजिशियंस. दे उनको नवाब के बच्चे जो जाते थे उनके पास
तहजीब
सीखने, आर्ट सीखने, कल्चर सीखने. सो ऑफकोर्स नो डाउट शी बिलोंग टू द तवायफ ट्रेडिशन. इनफैक्ट अ वेरी यू नो अ फिल्म बाय सबा दीवान, द अदर सॉन्ग केम दैट फीचर्ड मोस्ट ऑफ द यू कैन से विमेन ऑफ द तवायफ ट्रेडिशन, एंड रसूलन बाई वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन दैट फिल्म. एंड लेटर सबा दीवान केम आउट विद अ बुक कवरिंग ऑल दोज तवायफ इन विच रसूलन बाई वॉज ऑल्सो एक्सटेंसिवली कवर्ड. एंड अगर उनकी करियर की बात की जाए, जो सिंगिंग करियर कह सकते हैं, शी ऑफन सैंग ऑन द लखनऊ अलाहाबाद स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन टिल द ईयर 1972, एंड हर लास्ट पब्लिक परफॉर्मेंस वॉज हेल्ड इन कश्मीर. शी वॉज अवार्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल्स इन द ईयर 1957 बाय संगीत नाटक अकादमी. एंड डिस्पाइट एन इलस्ट्रियस म्यूजिकल करियर, शी डाइड इन पेन्यूरी अनफॉर्चुनेटली, running a small tea shop next to the radio station where she had often broadcast from. That's quite a travesty.
और अब हम याद कर रहे हैं जाने माने स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी शिरामुलु को। मद्रास प्रदेश से पृथक आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए अनशन करके उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। पोट्टी शिरामुलु ने नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ आंदोलन में जेल की सजाएं भी काटी और उन्होंने मद्य निषेध, हरिजन द्वार, खादी और ग्रामोद्योग के कार्यों में भी भाग लिया।
Today we are also remembering Usha Mangeshkar on her birthday. We all know her as a singer who has recorded many Marathi, Manipuri, Hindi, Bengali, Kannada, Nepali, Bhojpuri and Gujarati as well as Odia and Assamese songs. She is the youngest among the four Mangeshkar sisters after Lata Mangeshkar, Meena Khadikar and Asha Bhosle, as well as the only elder from brother Hridaynath Mangeshkar. She came into the spotlight as a playback singer after singing some devotional songs for the movie Jai Santoshi Ma, which became an all-time blockbuster. She was nominated for the Filmfare Best Female Playback Singer Award for her song मैं तो आरती इन दैट फिल्म।
जी सायरा, और उषा मंगेशकर ने बॉलीवुड फिल्म सुबह का तारा में डेब्यू किया था। वर्ष 1953 में उषा मंगेशकर ने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपना करियर शुरू किया। हालांकि इससे पहले वो कुछ कम बजट की फिल्मों में भी गा चुकी थी। इसके बाद ही उन्हें बड़ी सफलता मिली। उषा मंगेशकर को लोक संगीत से बहुत लगाव रहा और उन्होंने 60 साल से भी अधिक उम्र तक गाना गाया।
दैट्स राइट, और उनका सबसे फेमस सॉन्ग है ये वाला।
मंगता है तो
very famous song filmed on the memorable and very very remarkable Helen. And today is also birthday of Bhaichung Bhutia. Of course we know him as one of the first footballers who became very popular, because of course he is considered as the torch bearer of Indian football in the international arena. And the three-time Indian Player of the Year, I.M. Vijayan, described Bhutia as God's gift to Indian football. He has had four spells at then I-League side, East Bengal FC, and the club where he started his career. So today is Bhaichung Bhutia's birthday. Today is also Babul Supriyo's birthday, Farhat. We all know him as a very remarkable playback singer, live performer, television host, actor, and of course he has given some memorable songs, lekin sabse zyada unka famous song tha Kaho Na Pyar Hai film ka. Let's listen to that first.
सारा, बाबू सुप्रियो का एक नॉन फिल्मी गाना भी रहा अलका याग्निक के साथ, जो काफी लोकप्रिय रहा।
चांद रहता है आसमान के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास। खोया खोया क्यों रहता है आजकल ये दिल, समझती हो क्या मेरी मुश्किल। सारी सारी रात जागूं मैं चांद के साथ, बस मेरे आज कल ये मेरे जज्बा। कह दो ना प्यार
बहुत बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और आज अगर हम बचपन की जो है वो यादें ताज़ा करें तो मिकी माउस और डोनाल्ड डक की जो है वो याद अगर आती है तो उन्हें बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी ने आज के दिन हमें अलविदा कहा था।
That's right. और अब हम लोग कभी भी वक्त आ गया है कि हम अपने लिसनर्स को अलविदा कहें, बिकॉज इट्स टाइम टू रैप अप। स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। Thanks for tuning, listeners. DJ Farhat Osaira ko ijazat.
Namaskar.